मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो तागि जाते भये अरहंतादि जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु कहते शुद्धात्म में निरत नित्य तो वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजूंगे सतत केवल ज्ञान पाने पूजूंगे सतत केवल ज्ञान बोले भगवान महावीर स्वामी की दस लक्षण महापर्व की आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की
बोले परम पूज्य मुंडा श्री क्षमा सागर जी महाराज जी की परम पूज्य मुंडा श्री भक्ति सागर जी महाराज जी की मुनि संघ की
आज दस लक्षण पर्व का पांचवा दिन है। चार कषायों के अभाव में हमने अपने जीवन को अत्यंत निर्मल बनाने की कोशिश की है और जैसे ही हमारे अंतरंग में निर्मलता आती है हम सत्य को प्राप्त कर लेते हैं। या ऐसा कहें कि निर्मलता की प्राप्ति ही सत्य की प्राप्ति है। हमने पृथ्वी से क्षमा धारण करना सीखा। अगर हम जल से सब में मिक्सअप होने और मृदु होने की शिक्षा लें तो जल हमें ऐसी शिक्षा देता है। वायु हमें निर्द्वंद निश्चल होकर के रहने की शिक्षा देती है और अग्नि जो कुछ भी अतिरिक्त है उसको जला करके और अपने वास्तविक निर्मल स्वरूप को प्राप्त करने की शिक्षा दे। पंचभूत तत्वों में ये चार तत्व और बहुत आसानी से हमें संदेश देते हैं। हम इनसे कोई संदेश ले सकें तो ले लेना चाहिए। अगर हम सत्य के बारे में विचार करते हैं तो बहुत मुश्किल मालूम पड़ता है, क्योंकि एक तो है सत्य को प्राप्त करना, एक है सच्चा होना और एक है सच बोलना। तीनों चीजें अलग अलग होते हुए भी एक ही हैं। और मजा ये है कि जो सच को पा लेता है वही सच्चा होता है और उसके द्वारा बोला गया ही सब कुछ सच्चा होता है। वरना झूठा आदमी अगर सच बोले तो सिवाय उपद्रव के और कुछ खड़ा नहीं होता। इसलिए बहुत जरूरी है कि सच को प्राप्त करके और सच होकर के ही सच बोला जाए। ऐसे ही सत्य धर्म का आज दिन है, वरना दुनिया में सच बोलने वाले लोग बहुत हैं लेकिन जिस सच के पीछे और जीवन स्वयं का सच्चा नहीं हो वो सच दूसरे का अहित करने वाला है और जो सच दूसरे का अहित करता है वो झूठ के कैडर में जाता है। जैन दर्शन की बहुत स्पष्ट सी मान्यता है सत्य भी अहिंसा से समन्वित होना चाहिए तो ही वो सत्य श्रेष्ठ है। पर संतावय बैनम मोतूण सपरहित सहिदम, दूसरे को संताप पहुंचाने वाले वचनों को छोड़कर अपने और दूसरे के कल्याण के लिए जो वचन कहे जाते हैं वास्तव में वही सत्य धर्म है। इस पर अपन विचार करेंगे, पर पहले ये देख लें कि सच को पाना और सच्चा होना ये दोनों चीजें क्या हमें आज वर्तमान में संभव है। सत्य को प्राप्त होना तो बहुत कठिन चीज है, भगवान हो जाना ही सच को प्राप्त करना है, हमारा लक्ष्य वही है। और जो व्यक्ति उस सच्चाई को पा लेता है फिर उसके द्वारा या तो बोला ही नहीं जाता या कि बोला भी जाता है तो वो सब दिव्यध्वनि कहलाती है, वो बोलना नहीं कहलाता। एक बार क्या हुआ कि एक पिता के चार बेटे थे और पिता का मन था कि ये सच को जान ले, कम से कम सच को पाले या सच को जान ले। जाने बिना पाना संभव नहीं है, इसलिए जान तो लें कम से कम। चारों को कहा कि जाओ, अभी मेरे जीवन के कुछ वर्ष शेष हैं, मैं जीऊंगा, पर मैं चाहता हूं कि मेरे जीते जी तुम सच को पालो, सच को जान लो। बहुत कठिन है आज के समय में कोई पिता अपने बेटे से ये अपेक्षा रखे। हंसेंगे लोग कि कहां 16वीं शताब्दी में पहुंच गए 21वीं की जगह। अरे ये कहो कि फॉरेन कैसे जाएं, पैसे कैसे कमाएं, दुनियादार कैसे बने, आज तो सच्चाई इतनी सी है और क्या सच्चाई, इससे ज्यादा कोई सच्चाई हो सकती है। वो दिन लद गए जब पिता अपने बेटे से अपेक्षा रखता था कि मैं तो जीवन भर सच को प्राप्त नहीं कर पाया, तुम अपने जीवन रहते और सच को प्राप्त कर लो, सच्चाई को जान लो, इस संसार की वास्तविकता क्या है। मुझे तो ध्यान आता है कि किस तरह से लोग और आने वाली पीढ़ी को संदेश दे देते थे। एक संदेश देने की परंपरा ही थी, आज तो अपने आने वाली पीढ़ी को हम क्या संदेश दे रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन में ही वो चीजें नहीं हैं तो हम उन चीजों का क्या संदेश देंगे और सामने वाला क्या संदेश लेगा। गांधी जी से पूछा जाता था कि आपके जीवन का क्या दर्शन है, आपके जीवन का क्या फलसफा है, आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, तो कहते थे मेरा जीवन ही मेरा दर्शन, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, मैं जो करता हूं वैसा ही तुम चाहो तो कर सकते हो, उसमें ही हमारा कल्याण हो जाए। मुझे याद है कि दीपावली पर और पिता समझाते थे कि सुनो, जब मैं तुम्हारे हाथ पर चार चांदी के सिक्के और एक सोने का सिक्का रखूं और तुमसे पूछूं, जब हम छोटे थे तब, और तुमसे पूछूं कि खोटे हैं कि चोखे, तो कहना चोखे। पहले से रटवा दिया जाता था क्योंकि जब वो पूजा होगी उस समय पूछेंगे और तुम अचानक कुछ कह बैठो तो पहले से ही तय उत्तर है, प्रश्न का तय उत्तर है कि ये कहना, तो अपन को कुछ नहीं लगता था जब वो थैली में से निकाल करके और चार सिक्के चांदी के और एक सोने का रखते थे, वो पूछते थे कि खोटे के चोखे, तो हम कहते थे चोखे। जब थोड़े बड़े हुए तो हमसे नहीं पूछते थे, फिर घर में जो सबसे छोटा सदस्य होगा उससे पूछते थे, तो हमने कहा हमसे क्यों नहीं पूछते, तो बोले अब नहीं, तुम उस समय बहुत भोले भाले थे। उस समय तुम्हारे भीतर कोई छल नहीं था, इसलिए तुमसे पूछा जा सकता था, अब नहीं पूछा जा सकता, पर अब तुम्हें समझाया जा सकता है कि मैं ऐसा क्यों पूछता हूं। अब तुम्हें वो संदेश दिया जा सकता है, उसमें से संदेश में ये देना चाहता था कि सुनो, ये जितना जो महल बनवा के रखा है ना, जितना मकान बनवा के रखा है और जितनी धन संपत्ति दिखती है सब खोटी है, घर में ध्यान रखना ये चार सिक्के चांदी के और एक बहुत मुश्किल से पांचवा सिक्का सोने का, इतने ही चोखे हैं, बाकी सब बेईमानी का ठाट है, ये ध्यान रखना। घर में अगर चोखा काम है तो इतना ही काम है चोखा और बाकी नहीं है, और इसमें अगर चोखे में कुछ इजाफा करना चाहो तो दीपावली पर इसमें इजाफा करना, वरना इसमें तो बढ़ाते चले जाओ, सब बेईमानी है। इस तरह सच्चाई को हमें बता देने वाले लोग, आज नहीं बताता कोई इस सच्चाई को, न इतनी समझ है कि इस सच्ची बात को हम अपने आने वाली पीढ़ी से कह सकें कि सच्चाई तो इतनी ही है। और वो पिता अपने बेटों से अपेक्षा रख रहा है चारों से कि जाओ सच को जान के आओ, सच को पाने के लिए सच को जानना जरूरी है कि है क्या वास्तविकता। वो जाते हैं चारों और दिन तय हो जाता है कि इस दिन वापिस लौट के आएंगे और बताएंगे कि किसने क्या पाया, क्या जान के आए। और चारों उस निश्चित समय पर वापिस लौट के आते हैं, 5-7 साल की बहुत बड़ी साधना करके वे चारों लौटते हैं। तो पहला वाला तो आकर के पिता से पूछने पर कि तुमने सच को जान लिया, और वो जैसे ही पूछते हैं कि सच को जान लिया तो वेद की ऋचाएं कहना शुरू कर देता है। पिता सिर नीचा किए चुप रह जाते हैं, दूसरे की तरफ देखते हैं कि तुमने क्या जाना, दूसरा उपनिषद की श्लोक दोहराना शुरू कर लेता है कि मैंने ये जाना, सच्चाई ये है। उससे भी निराश हो जाते हैं पिता, भैया ग्रंथ की कुछ बातें गाथाएं ऋचाएं और श्लोक रट लेने से कोई अगर सच को प्राप्त हो गया होता तो हम और आप आज तक तो हो चुके। वो सब चीजें हमारे जीवन में घटित नहीं होती हैं तो सिर्फ श्रेरंगम होके रह जाती, हृदयंगम नहीं होती। ये आचार्य महाराज हमेशा से कहते हैं, ग्रंथों को सिरंगम कर लेना, माथे में धर लेने का नाम सत्य को प्राप्त करना नहीं है। भले ही वो सत्य को प्राप्त करने वाले लोगों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ क्यों ना हो, वेद की ऋचाएं एक ने बता दी, दूसरे ने उपनिषद के श्लोक दोहरा दिए, और तीसरे की तरफ जब दृष्टि उठाई तो उसने सारे धर्मों की जो श्रेष्ठ बातें हो सकती थी वो कहना शुरू कर दी। पिता एकदम निराश हो गए कि वर्षों बीत गए लेकिन कोई भी बेटा सच को जान नहीं सका, सच को पाना तो बहुत दूर है और मेरा जीवन तो अब अंतिम क्षणों में गुजर रहा है, मैं ये बिना देखे मर जाऊंगा कि मेरे किसी भी बेटे को सच की प्राप्ति हुई, सच को मेरे पुत्रों ने जान लिया, इसके पहले ही मुझे मरना पड़ेगा। लेकिन थोड़ी सी आशा अभी थी कि चौथा वाला बहुत छोटा है और उस चौथे वाले की तरफ देखा तो चौथा वाला जो है पिता से कुछ ना बोल करके पिता के चरणों में झुका, पैर छुए, पिता की आंखों में देखा, हल्का सा मुस्कुराया, फिर दो आंसू उसको उसके आंख में से नीचे गिर गए। बस पिता गदगद हो गया, छाती से लगा लिया कि बस मेरे प्राण छूटने से पहले मुझे इस बात की खुशी रहेगी कि मेरे परंपरा में किसी एक व्यक्ति ने ज्ञान को उपलब्ध कर लिया, सत्य को जान लिया है, अब वो सत्य को पालेगा। सत्य इतना सा ही है और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जहां हम आत्मा को पहचान लेते हैं, जहां हमें आत्मज्ञान हो जाता है और हम चुप हो जाते हैं, जहां हम सिर्फ फील करते हैं, रियलाइजेशन इज द ट्रूथ, जहां आत्मा की अनुभूति होती है और कहने को कुछ भी शेष नहीं रह जाता है, जहां आंखें भर जाती हैं प्राणी मात्र के प्रति प्रेम से, ज्ञानस्य फलम उपेक्षा प्रीति जायते। सच्चे ज्ञान का फल इतना ही है कि प्राणी मात्र से प्रीति हो जाए और संसार के राग द्वेष के बीच समता परिणाम जागृत हो जाए। उस बेटे ने यही मैसेज दे दिया था कि मैंने सीख लिया है वर्षों दुनिया के बीच रह करके, मैंने अनुभव कर लिया है जीवन की सच्चाई को कि सब कुछ जानने के बाद भी अगर अपने को नहीं जाना, जो एकम जाने सो सबम जाने, जो एकम अभी न जाने सो सबम अभी न जाने, जो एक को अपनी आत्मा को जान लेता वो सब को सारे जगत को जान लेता, और सारे जगत को जान ले और अपनी आत्मा को ना जाने तो उससे ज्यादा झूठा व्यक्ति कौन हो सकता है, उससे ज्यादा झूठ में जीने वाला कौन हो सकता है। और हम और आप ऐसे ही झूठ में जीने वाले लोग हैं, ये हमें आज तय कर लेना चाहिए। हम कितनी बातें जानते हैं सच की, ढेरों बातें जानते हैं। मैं आपके सामने यहां बैठ के और घंटों नहीं दो दो घंटे तक सच के बारे में बोल सकता हूं, दुनिया की तमाम बातें मैं आपसे कर सकता हूं। आप भी बहुत जानते होंगे, मेरे से भी ज्यादा वर्षों की अपेक्षा और वृद्धि भी हैं, और सब जानते हैं, दुनिया बहुत देखी है, लेकिन ये सब चीजें महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है आत्मा और अनात्मा के बीच की भेद रेखा जानना, महत्वपूर्ण है और शांत हो जाना सारे संसार में राग द्वेष से मुक्त होकर के और विचरण करना, शायद यही है सच को जानना और यही है सच को पाना। हमारा लक्ष्य तो यही होना चाहिए भैया, लेकिन क्या करें, हम इस सच को जानते हुए भी अनुभव नहीं कर पाते हैं, और जब तक हम अनुभव नहीं करते हैं तो प्राप्त भी कहां कर पाते हैं। चलो कोई बात नहीं, सच्चे होने की चेष्टा करें, चलो जितना हो सके जीवन सच्चा तो हो जाए। नहीं जाना हमने सच को, अभी नहीं पाया हमने सच को, पर सच होने की कोशिश तो करें। सच होने की कोशिश भी बहुत कठिन है, क्योंकि कोशिश कर करके सच्चा नहीं हुआ जाता ना। हाँ, जो सच्चा है उसका अगर हम सम्मान करना शुरू कर दें तो सच्चा हुआ जा सकता है। जहां जहां सच्चाई दिखाई पड़ती है, जिसे हम सच मानते हैं, वहां हम सम्मान करना शुरू कर दें। मुझे तो एक ही उपाय समझ में आया सच्चे होने का, कि जहां मेरे भीतर भी सच्चाई है वहां मैं उसका सम्मान करूं, और जहां जितना मैं झूठा हूं उसका सम्मान न बाहर चाहूं न स्वयं उसका सम्मान करूं, और कहीं अगर झूठे पने का सम्मान होता हो तो वहां से विड्रॉ कर लूं, और जहां कहीं कोई सच्चाई है तो उसका सम्मान करूं। लेकिन आज हम खुल के सच्चाई का सम्मान नहीं कर पाते हैं और झूठ का निषेध नहीं कर पाते। हमें बेईमान आदमी का साथ देना पड़ता है और ईमानदार आदमी से हम कन्नी काट के, किनारा काट के एक तरफ चले जाते हैं, क्योंकि ईमानदार के साथ कोई खड़ा ही नहीं दिखाई पड़ता, बेईमान के साथ तो पूरी दुनिया खड़ी हुई दिखाई पड़ती है। हमें वहां ज्यादा सेफ हम मालूम पड़ते हैं। आज देख लें आप इस बात को, मैं कोई झूठ बोल रहा हूं तो आप उसको संभाल लीजिएगा, वरना मुझे लगता है कि इस संसार की सच्चाई इतनी ही है। हम सामने सामने भी जानते हुए भी और झूठ के साथ खड़े हो जाते हैं और सच के साथ नहीं खड़े हो पाते हैं। मन ही मन जरूर है, हम अपने अंतरंग में सच का सम्मान तो करते हैं, लेकिन बाहर हम कभी सच का सम्मान नहीं करते। चार लोगों के बीच हम सच का सम्मान, ईमानदारी का सम्मान नहीं करते हैं। इतने कमजोर हम हो चुके हैं, या कहें कि हम इतने दुस्साहसी हो गए हैं कि बेईमानी के साथ तो खड़े हो जाते हैं, उसका साहस कर लेते हैं, उसको साहस नहीं कहते, उसको दुस्साहस कहते हैं। हमें जरा भी ग्लानि नहीं होती है बेईमानी के साथ खुद करने में भी एक जगह लिखा था कि देखो तो झूठ प्रकट हो जाने पर शर्म आती है, झूठ बोलते समय शर्म नहीं आती, पाप करते समय शर्म आनी चाहिए थी, जब पाप प्रकट हो जाता है तब तो शर्म आती है, पाप करते समय शर्म नहीं आती। इसी तरह से इस पर हमें विचार करना चाहिए कि सच तो हम होना चाहते हैं, लेकिन सच होने के लिए पहले भीतर सच्चाई के सम्मान करने का साहस है या नहीं है, और दूसरे जहां जहां दूसरे के भीतर सच्चाई है उसका सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं। चलिए जहां झूठ है वहां हम उसका असम्मान भी नहीं करें लेकिन सम्मान भी नहीं करें, कम से कम तटस्थ तो बने रहें कि मैं कम से कम झूठ का समर्थन तो नहीं करूंगा। आचार्य श्री का मैंने एक बहुत बड़ा गुण देखा, बहुत निकट से देखा है, मैं इस चीज का कभी कभार बहुत उत्साह में दावा भी कर देता हूं कि मैं बहुत निकट से उनके चरणों में बैठ करके और उनको बहुत निकट से देखा है। उनकी बहुत बड़ी विशेषता है, जहां कोई भी उनका शिष्य गलत होता है वे उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते, न वे उसका समर्थन करते हैं न वे उसकी निंदा करते हैं, निंदा प्रशंसा दोनों से चुप, देख रहे हैं कि यह ठीक नहीं कर रहा है तो चुप है, अपने आप आओगे कि भगवान मेरे से चुप्पी क्यों साध ली, क्या गलती है मेरी, तो निवेदन करो गलती का तो प्रायश्चित देंगे, गलती सामने दिखाई पड़ जाती तब भी बुलाकर के नहीं कहते कि ये वाली गलती है और क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं कहते, हम लोग दंग रह जाते थे कि अरे सामने सामने दिख गई फिर भी नहीं बोल रहे हैं, नहीं, तब उनसे एक बार पूछा कि आप क्यों नहीं हमें अपनी गलती बता देते, कहते जब तक तुम रियलाइज नहीं करोगे तब तक मेरे बताने से क्या होने वाला, तुम खुद अपनी आलोचना करो कि भगवान ये गलती हो गई, तुम्हें बैठा हूं प्रायश्चित देने, मैं पकड़ पकड़ के तुम्हें तुम्हारी गलतियों सुधारने के लिए प्रेरित करूंगी, मेरा काम नहीं है, मेरा काम है कोई गलती स्वीकार करे तो उसे उस गलती से मुक्त होने की प्रक्रिया बता दूं कि ये अनुष्ठान कर लो, ये प्रायश्चित दे दो, गलती से मुक्त हो जाओगे, मैं गलती जानते हुए भी कहूंगा नहीं। जहां बेईमानी है मैं आपसे कह रहा हूं कि वहां हम उपेक्षा या तटस्थ भाव क्यों नहीं रख पाते हैं, और जहां सच्चाई है वहां खुल करके और जाकर के उसके साथ क्यों नहीं खड़े होते हैं कि डोंट फियर आई एम विद यू, आप अकेले नहीं हैं, आप सच्चे हैं, मैं आपके साथ हूं।